अध्याय 24 एक शादी परिधान के बिना। ये अध्याय मत्ती 22 आयत 1 से 14 पर आधारित है। शादी के परिधान का दृष्टांत हमारे सामने उच्चतम परिणाम का एक पाठ खोलता है। विवाह द्वारा उस चरित्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसके लिए सभी को विवाह के उपयुक्त अनुमान लगाना चाहिए। इस दृष्टांत में जैसा कि महान समर्थक के रूप में है सुसमाचार का निमंत्रण, इसकी अस्वीकृति को चित्रित करता है। यहूदी लोगों द्वारा और अन्य जातियों पर दया की प्रकार, लेकिन उन लोगों की ओर आमंत्रण अस्वीकार करने वाला यह दृष्टांत एक गहन अपमान और एक अधिक भयानक सजा को देखने के लिए लाता है। दावत का आद्वान एक राजा का निमंत्रण है। ये एक से आगे बढ़ता है जो शक्ति के साथ निहित होता है। ये उच्च सम्मान प्रदान करता है। अभी तक सम्मान नहीं है। राजा का अधिकार तिरस्कृत है, जबकि गृहस्वामी के निमंत्रण को उदासीनता के माना जाता था। राजा का अपमान और हत्या के साथ मुलाकात की जाती है। उन्होंने अपने सेवकों को तिरस्कार के साथ व्यवहार किया, इसके बावजूद उनका इस्तेमाल किया और उन्हें मार डाला। गृहस्वामी ने उनके निमंत्रण को थोड़ा देखते हुए घोषणा की कि जिन पुरुषों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें से किसी को भी अपने खाने का स्वाद नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने राजा के बावजूद किया था, उनकी उपस्थिति और उनकी तालिका से बहिष्करण से अधिक निर्णायक है। उसने अपनी सेनाओं को भेजा और उन हजारों को नष्ट कर दिया और उनके शहर पर बोझ डाला। दोनों दृष्टांतों में मेहमानों के साथ दावत दी जाती है, लेकिन दूसरा वहां होता है जो दावत में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए तैयार किया जाता है। जो लोग इस तैयारी की उपेक्षा करते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। जो राजा मेहमानों को देखने के लिए आया था और वहां एक आदमी को देखा जो शादी के परिधान में नहीं था, उसने कहा, मित्र, तू शादी के परिधान में नहीं है। और वो चुप था, कुछ बोल नहीं पाया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पैर बांधो और इसे अंधेरे में ले जाऊं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना हो रहा है। दावत का बुलावा मसीह के चेलों ने दिया था। हमारे ईश्वर ने 12 और बाद में 70 बाहर भेजा था, ये घोषणा करते हुए कि ईश्वर का राज्य हाथ में था और पुरुषों को पश्चाताप करने, सुसमाचार पर विश्वास करने का एहसास किया। लेकिन बुलाहट पर ध्यान नहीं दिया गया। जो लोग दावत के लिए प्रतिबंधित है वो नहीं आए। नौकरों को ये कहने के लिए बाद में भेजा गया, देखो, मैंने अपना रात्रि भोज तैयार कर लिया है, मेरे बैलों और वाघियों को मार दिया गया है और सभी चीजें तैयार हो गई है, शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये मसीह के कूस पर चढ़ाने के बाद यहूदियों को दिया गया संदेश था। लेकिन जिस देश ने परमेश्वर के अजीबोगरीब लोगों का दावा किया था, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति में लाए गए सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। कई लोगों ने इसे सबसे अधिक अपमानजनक तरीके से किया। मुक्ति की पेशकश, ईश्वर की जय को ठुकराने के लिए क्षमा की पेशकश से अन्य लोग इतने अधिक उत्तेजित हो गए थे कि उन्होंने संदेश देने वालों पर पलटवार किया। घोर उत्पीड़न, प्रेरितों 8 आयत 1। कई पुरुषों और महिलाओं दोनों को जेल में डाल दिया गया और स्टीफन और याकूब के रूप में ईश्वर के कुछ दूतों को मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार यहूदी लोगों ने ईश्वर की दया को अस्वीकार कर दिया। परिणाम दृष्टांत में मसीह द्वारा निर्धारित किया गया था। राजा ने अपनी सेनाओं को भेजा, उन हत्यारों को नष्ट कर दिया और उनके शहर को जला दिया सुनाया गया। निर्णय यहूदियों के यरूशलेम के विनाश और राष्ट्र बिखेरने पर आया। दावत की तीसरी बुलाहट अन्य जातियों को सुसमाचार देने का प्रतिनिधित्व करती है। राजा ने कहा, शादी के लिए सब तैयार है, लेकिन वे जो प्रतिबंधित थे वे योग्य नहीं थे। इसलिए तुम राजमार्गों में जाओ, जितने भी तुम पाओगे शादी के लिए बुलाकर लाओ। राजा के सेवक जो राजमार्गों में निकलते थे वे सभी अच्छे और बुरे इकट्ठे होते थे। ये एक मिले जुले लोग थे। उनमें से कुछ के पास दावत देने वाले के लिए और अधिक वास्तविक संबंध नहीं थे, जिन्होंने बुलाहट को अस्वीकार कर दिया था। पहले जिस वर्ग पर प्रतिबंध लगाया था वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने राजा के भोज में शामिल होने के लिए किसी भी सांसारिक लाभ का त्याग करने की सोची। जिन लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने केवल खुद को लाभ पहुंचाने की सोची। ये दावत के प्रावधानों को साझा करने के लिए आए थे, लेकिन राजा को सम्मान देने की कोई इच्छा नहीं थी। जब राजा मेहमानों को देखने आया तो सभी का असली चरित्र सामने आया। दावत में हर मेहमान के लिए शादी का लिबास उपलब्ध कराया गया था। ये लिबास राजा का एक उपहार था। इसे पहनकर मेहमानों ने दावत देने वालों के प्रति अपना सम्मान दिखाया। लेकिन एक आदमी अपने आम नागरिक की पोशाक पहने हुए था। उसने राजा द्वारा आवश्यक तैयारी से इनकार कर दिया था। उनके लिए पहना जाने वाला लिबास काफी महंगा था, जिसे उसने पहनना पसंद नहीं किया। इस प्रकार उसने अपने स्वामी का अपमान किया। राजा की मांग के अनुसार शादी के लिबास में नहीं होने के कारण आप यहां कैसे पहुंचे? वो कुछ भी जवाब नहीं दे सका। उन्होंने आत्मनिंदा की। तब राजा ने कहा, उसके हाथ और पैर बांधो और उसे दूर ले जाओ और उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। दावत में मेहमानों की राजा की परीक्षा द्वारा निर्णय के कार्य प्रतिनिधित्व किया जाता है। सुसमाचार की दावत में अतिथि वे होते हैं जो ईश्वर की सेवा करने में माहिर होते हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। लेकिन सारे जो खुद को मसीही कहते हैं वो सच्चे शिष्य नहीं हैं। अंतिम इनाम दिए जाने से पहले ये तय किया जाना चाहिए कि धर्मी की विरासत को साझा करने के लिए तैयार है। ये निर्णय स्वर्ग के बादलों में मसीह के दूसरे आगमन से पहले किया जाना चाहिए। जब वो आता है तो उसका प्रतिफल उसके साथ होता है। प्रत्येक मनुष्य को उसके अनुसार काम देना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22:12। उसके आने से पहले तक हर आदमी के काम का चरित्र निर्धारित किया होगा। मसीह के हर एक अनुयायी को उनके कार्यों के अनुसार इनाम दिया जाएगा। ये तब है जब पुरुष अभी भी पृथ्वी पर निवास कर रहे कि जांच अदालत का काम स्वर्ग की अदालतों में होता है। परमेश्वर के सामने उसके सभी अनुयायी का जीवन समीक्षा में गुजरता है। स्वर्ग की पुस्तकों के रिकॉर्ड के अनुसार सभी की जांच की जाती है और उनके कर्मों के अनुसार प्रत्येक की नियति हमेशा के लिए तय हो जाती है। दृष्टांत में शादी का कपड़ा शुद्ध बेदाग चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह के सच्चे अनुयायियों के पास होगा। कलीसिया को ये दिया गया है कि उसे महीन लिनेन साफ और सफेद में पिरोया जाना चाहिए। बेदाग, शिकन या ऐसी कोई चीज नहीं। प्रकाशित वाक्य 19:8, इफिसियों 5:27। महीन लिनन शास्त्र कहता है। धमिरियों की धार्मिकता है उसका स्वयं का निष्कलंक चरित्र है कि विश्वास के माध्यम से सभी को प्रदान किया जाता है, जो विश्व उन्हें अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं। जब हमारे पवित्र माता पिता ने पवित्र वस्त्र पहना, जब उन्हें अदन की वाटिका में ईश्वर ने रखा, वे ईश्वर को इच्छा के अनुरूप थे। उनके प्यार की सारी ताकत उनके स्वर्गीय पिता को दी गई थी। एक सुंदर कोमलता ईश्वर की ज्योति पवित्र जोड़ी को बनाए रखती है। प्रकाश का ये बागा स्वर्गीय निर्दोषिता के उनके आध्यात्मिक वस्त्रों का प्रतीक था। अगर वे ईश्वर के प्रति सच्चे होते तो ये उन्हें हमेशा के लिए जारी रख सकता था। जब पाप ने प्रवेश किया तो उन्होंने ईश्वर के साथ संबंध को विच्छेद कर दिया और प्रकाश ने उन्हें छोड़ दिया। नग्न और शर्मिंदा के कारण उन्होंने एक आवरण के लिए अंजीर के पत्तों को एक साथ सिलाई करके स्वर्गीय वस्त्रों के स्थान की आपूर्ति करने की कोशिश की। आदम और हवा की अवज्ञा के दिन से ईश्वर के कानून के अपराधी अपराधियों ने यही किया है। उन्होंने एक साथ अंजीर के पत्तों को सिला है ताकि संक्रमण के कारण होने वाले नग्नता को कवर दिया जा सके। उन्होंने अपने वशीकरण के वस्त्र पहन रखे हैं। अपने स्वयं के कार्यों से उन्होंने अपने पाप को ढंकने की कोशिश की है और स्वयं को ईश्वर के साथ स्वीकार्य बनाया है। लेकिन यह वे कभी नहीं कर सकते। अपनी मासूमियत की खोई हुई जगह की आपूर्ति करने के लिए मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। कोई अंजीर कपड़ा नहीं छोड़ता, कोई सांसारिक नागरिक पोशाक नहीं पहन सकता जो मसीह के साथ बैठते हैं और भेड़ के बच्चे को विवाह स्थल पर स्वर्गदूत होते हैं। केवल वही आवरण जो मसीह ने स्वयं प्रदान किया है वो हमें ईश्वर की उपस्थिति में प्रकट होने के लिए मिल सकता है। ये आवरण उसकी अपनी धार्मिकता का आधार है। मसीह प्रत्येक पश्चाताप आत्मा पर विश्वास करे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, वो कहते हैं, मुझे खरीदने के लिए सफेद वस्त्र हैं कि आप सबसे कपड़े पहने हो सकते हैं और ये कि आपकी नग्नता की शर्म नहीं दिखाई देती है। प्रकाशित वाक्य 3:18। स्वर्ग के करघे में बुने गए इस बागे में इंसानों का एक भी धागा नहीं है। मसीह ने अपनी मानवता में एक आदर्श चरित्र का निर्माण किया और इस चरित्र को उन्होंने हमें प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। हमारी सारी धार्मिकता गंदी लकीरों के समान है। यशाया 64:6। सब कुछ जो हम स्वयं कर सकते हैं वो पाप से अपवित्र है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ था और वो कोई पाप नहीं है। पाप को कानून का उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है, 1 यूहन्ना 3:4-5। लेकिन मसीह कानून की हर आवश्यकता के लिए आज्ञाकारी था। उसने खत से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा को परी करने के लिए खश है। हे मेरे ईश्वर, हौ तुम्हारा कानून मेरे दिल के भीतर है। भजन संहिता 90:8। जब पृथ्वी में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का मान रखा है। जब हम आपको मसीह के पास लाते हैं तो हृदय उनके साथ एक हो जाता है, इच्छा शक्ति उनकी विलीन हो जाती है, मन उनके मन के साथ एक हो जाता है, विचारों को उसकी कैद में लाया जाता है, हम उसका जीवन जीते हैं। यही उसका धर्म के परिधान के साथ पहना जाने का अर्थ है। तब जैसे प्रभु हमें देखता है वो देखता है, न कि पत्ती का वस्त्र, नंगापन और विकृत नहीं, पाप, लेकिन उसकी अपनी धार्मिकता जो यहोवा के कानून का सही पालन है। राजा द्वारा शादी की दावत में आए मेहमानों का निरीक्षण किया गया। केवल उन लोगों को स्वीकार किया गया जिन्होंने उनकी आवश्यकताओं का पालन किया था और शादी के परिधान पर डाल दिया था। तो ये मेहमानों के साथ सुसमाचार भी दावत में है। सभी को महान राजा की जांच से गुजरना चाहिए और केवल वे ही प्राप्त होते हैं जिन्होंने मसीह की धार्मिकता को अपनाया है। धार्मिकता सही है और ये उनका कर्म है कि सभी का न्याय किया जाएगा। हमारे चरित्रों का पता चलता है कि हम क्या करते हैं, काम दिखाते हैं, श्रद्धा वास्तविक है या नहीं। हमारे लिए ये मानना पर्याप्त नहीं है कि यीशु एक धर्मनिरपेक्ष नहीं है और ये कि बाइबल का धर्म कोई चालाकी से तैयार की गई कल्पना नहीं है। हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु का नाम स्वर्ग के नीचे एकमात्र ऐसा नाम है जिससे मनुष्य को बचाया जा सकता है, और फिर भी हम विश्वास के माध्यम से उसे अपना निजी उद्धारकर्ता नहीं बना सकते। सत्य के सिद्धांत को मानना पर्याप्त नहीं है। यही मसीह में विश्वास का एक पेशा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है और हमारे नाम चर्च के रोल पर दर्ज है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। 1 यूहन्ना 3:24, 1 यूहन्ना 2:3। ये धर्मांतरण का वास्तविक प्रमाण है। जो कुछ भी हमारे पेशे में है वो तब तक कुछ भी नहीं है जब तक कि मसीह धर्म के कार्यों में प्रकट नहीं होता। सत्य को हृदय में लगाना है, ये मन को नियंत्रित करना और स्नेह को नियंत्रित करना है। पूरे चरित्र को दैवीय कथनों से मोहर लगानी चाहिए। ईश्वर के शब्द के जोत और शीर्षक को दैनिक व्यवहार में लाना है। वो जो ईश्वरीय प्रकृति का सहभागी बन जाता है वो ईश्वर के महान धर्म, उसके पवित्र नियम के अनुरूप होगा। ये वो नियम है जिसके द्वारा परमेश्वर पुरुषों के कार्यों को मापता है। ये निर्णय में चरित्र की परीक्षा होगी। कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि कानून को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसमें उन्होंने मसीह के अपने शब्दों का खंडन किया। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। जब तक कि आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा किया हुए टलेगा। मत्ती 5:17-18। ये मनुष्य के कानून के उल्लंघन के लिए प्रायश्चित करने के लिए था कि मसीह ने अपना जीवन लगा दिया। अगर कानून बदल सकता तो मसीह को मरने की जरूरत नहीं थी। पृथ्वी पर अपने जीवन के द्वारा उन्होंने ईश्वर के कानून का सम्मान किया। अपनी मृत्यु से उन्होंने इसे स्थापित किया। उन्होंने अपना जीवन एक बलिदान के रूप में दिया, ईश्वर के कानून को नष्ट करने के लिए, एक निचले स्तर को बनाने के लिए नहीं। लेकिन यह है कि न्याय को बनाया रखा जा सकता है, कि कानून को अपरिवर्तनीय दिखाया जा सकता है, ये हमेशा के लिए तेजी से खड़ा हो सकता है। शैतान ने दावा किया था कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना असंभव था, और हमारी अपनी ताकत में ये सच है कि हम उनकी बात नहीं मान सकते। लेकिन मसीह मानवता के रूप में आया और अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता से उसने साबित किया कि मानवता और देवत्व संयुक्त ईश्वर के हर एक उपदेश को मान सकते हैं। जितने उन्हें प्राप्त हुए, उन्होंने उन्हें ईश्वर के पुत्र बनने की शक्ति दी, यहां तक कि उनके नाम पर विश्वास करने की भी। यूहन्ना 1:12। ये शक्ति मानव एजेंट में नहीं है, ये ईश्वर की शक्ति है। जब कोई आत्मा मसीह को प्राप्त करता है तो वो मसीह का जीवन जीने के लिए शक्ति प्राप्त करता है। परमेश्वर को अपने बच्चों की पूर्णता की आवश्यकता है। उनका कानून उनके चरित्र पर एक प्रतिलेख है, और ये सभी चरित्र का मानक है। ये अनंत मानक सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि परिजनों के संबंध में कोई गलती हो, जिससे परमेश्वर को अपने राज्य की रचना करनी होगी। पृथ्वी पर मसीह का जीवन काल ईश्वर के नियम के एक आदर्श अभिव्यक्ति था। उनका दावा है कि ईश्वर के बच्चे चरित्र में मसीही के समान हो जाते हैं। वे ईश्वर की आज्ञाओं के आज्ञाकारी होते हैं। तब प्रभु उन पर भरोसा कर सकते हैं जो स्वर्ग के परिवार की रचना करेंगे। मसीह की धार्मिकता के गौरवशाली दृश्य में कपड़े पहने हुए, उनके पास राजा की दावत में एक जगह है। उन्हें खून से धोए गए सिंहासन में शामिल होने का अधिकार है। शादी के कपड़ों के बिना दावत में आए व्यक्ति आज हमारी दुनिया में कई लोगों की हालत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मसीही होने का दावा करते हैं और सुसमाचार का आशीर्वाद और विशेषाधिकारों का दावा करते हैं, फिर भी उन्हें चरित्र परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पाप के लिए सच्चा पश्चाताप महसूस नहीं किया। उन्हें मसीह की उनकी आवश्यकता का एहसास नहीं होता है, और न ही वो उनके बारे में जानकारी देता है। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि वे अपने आप में काफी अच्छे, मसीह में विश्वास के बजाय योग्यता पर बाकी आराम करते हैं। शब्दों को सुनने वाले वे भोज में आते हैं, लेकिन उन्होंने मसीह की धार्मिकता को अपनाया नहीं है। पवित्र आत्मा का काम उनके लिए एक अजीब काम है। वे शब्द के कर्ता नहीं हैं। स्वर्गीय सिद्धांत जो उन लोगों में भेद करते हैं जो मसीह के साथ एक हैं, जो दुनिया के साथ एक हैं, वे लगभग अविभाज्य बन गए हैं। मसीह के प्रवीण अनुयायी अब एक अलग और अजीब लोग नहीं हैं। सीमांकन की रेखा अविभाज्य है। लोग अपनी प्रथाएं, अपने रीति रिवाजों, अपने स्वार्थ के लिए खुद को दुनिया के अधीन कर रहे हैं। चर्च कानून के पालन में कलीसिया के ऊपर चला गया है। रोजाना कलीसिया को दुनिया में बदला जा रहा है। ये सभी मसीह की मृत्यु से बचने की उम्मीद करते हैं, जबकि वे अपनी आत्मत्याग जीवन जीने से इनकार करते हैं। वे निशुल्क अनुग्रह के धन का विस्तार करते हैं और अपने चरित्र के दोषों की जांच करने की उम्मीद करते हुए धार्मिकता की उपस्थिति के साथ खुद को ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों का ईश्वर के दिन में कोई फायदा नहीं होगा। मसीह की धार्मिकता एक पोषित पाप को कवर नहीं करेगी। एक आदमी दिल में कानून तोड़ने वाला हो सकता है, फिर भी यदि वह अपराध का कोई बाहरी कार्य नहीं करता है तो उसे दुनिया द्वारा महान अखंडता के साथ माना जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का नियम दिल के रहस्यों को देखता है। हर अधिनियम को उन उद्देश्यों से आका जाता है जो इसे संकेत देते हैं। केवल वही जो परमेश्वर के कानून के सिद्धांतों के अनुरूप है निर्णय में खड़ा होगा। ईश्वर प्यार है। उसने मसीह के उपहार में वो प्यार दिखाया है। जब उसने अपना एक इकलौता पुत्र हमको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। उसने अपने खरीदे हुए कब्जे से कुछ नहीं पाया, उसने सारा स्वर्ग दे दिया, जिससे हम शक्ति और दक्षता प्राप्त कर सकते हैं कि हम दुखी नहीं, हमारे विरोधी से दूर रहें। लेकिन ईश्वर का प्यार उसे पाप का बहाना नहीं देता। उसने शैतान में इसका बहाना नहीं बनाया, उसने आदम और कैन में कोई बहाना नहीं बनाया, और ना ही वह पुरुषों के बच्चों में से किसी में भी इसका बहाना करेगा। वो हमारे पापों पर विश्वास नहीं करेगा या हमारे चरित्र के दोषों को नजरअंदाज नहीं करेगा। वो हमेशा अपेक्षा करता है कि हम उसके नाम पर विचार करें। जो लोग मसीह की धार्मिकता के उपहार को अस्वीकार करते हैं, वे चरित्र की विशेषताओं को अस्वीकार कर रहे हैं जो ईश्वर के बेटे और बेटियों का गठन करेंगे। वे इसे खारिज कर रहे हैं जो अकेले उन्हें शादी की दावत में एक जगह के लिए उपयुक्तता दे सकता है। दृष्टांत में राजा ने पूछताछ की, शादी के परिधान में नहीं होने के कारण आप यहां कैसे आए? वो आदमी अवाक था। तो वो महान निर्णय दिन में होगा। पुरुष अब अपने चरित्र के दोषों का बहाना कर सकते हैं, लेकिन उस दिन वो कोई बहाना नहीं देंगे। इस पीढ़ी में यीशु के उत्कृष्ट चर्च उच्चतम विशेषाधिकार प्राप्त है। प्रभु हमें कभी कभी बढ़ती हुई रोशनी में प्रकट करते हैं। हमारे विशेषाधिकार ईश्वर के प्राचीन लोगों के विशेषाधिकार से कहीं अधिक है। हमारे पास केवल इज़राइल के प्रति प्रतिबद्ध प्रकाश नहीं, लेकिन हमारे पास मसीह के माध्यम से लाए गए महान मोक्ष के बढ़े हुए प्रमाण है। जो यहूदियों के लिए प्रकार और प्रतीक था, वो हमारे लिए वास्तविकता है। उनके पास पुराने नियम का इतिहास था, हमारे पास वो और नया नियम भी है। हमारे पास एक उद्धारकर्ता का आश्वासन है जो आया है, एक उद्धारकर्ता जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जो उठ गया है, और यूसुफ के किराए पर लेने वाले अधिक ने घोषणा की है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मसीह और उसके प्रेम के हमारे ज्ञान, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में रखा गया है। मसीह हमें धर्मी पदेशों में प्रकट करता है और गीतों में हमें जापता है। समझद भोज में हमारे सामने आध्यात्मिक भोज निर्धारित किया गया है। अनंत लागत पर प्रदान की जाने वाली शादी का कपड़ा हर आत्मा को मुफ्त में दिया जाता है। ईश्वर के दूतों द्वारा हमें मसीह की धार्मिकता, विश्वास के द्वारा औचित्य, ईश्वर के वचन के महान और अनमोल वचनों, मसीह द्वारा पिता को मुफ्त आत्मीयता, आत्मा को शांति, शाश्वत जीवन का सुविचारित आश्वासन दिया जाता है। ईश्वर के राज्य में हम क्या कर सकते हैं जो कि उसने महान भोज, स्वर्गीय भोज प्रदान करने में नहीं किया है? स्वर्ग में यह मंत्री स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया है, जिस सेविका को हमारे द्वारा किए प्रदर्शन के लिए कमीशन किया गया है। हमने दुष्ट स्वर्गदूतों की सेवा को भगाया, हमने पुरुषों की आत्माओं में चमक और प्रकाश भेजा, यीशु में व्यक्त ईश्वर के प्रेम की उनकी स्मृति को तेज किया, हमने उनकी आंखों को मसीह के क्रूस पर आकर्षित किया, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने वाले पाप की भावना से उनके दिल गहरा गए, उन्हें दोषी ठहराया गया, उन्होंने रूपांतरण में उठाए जाने वाले कदमों को देखा, उन्होंने सुसमाचार की शक्ति को महसूस किया, उनके दिलों को कोमल बनाया गया क्योंकि उन्होंने ईश्वर के प्यार की मिठास देखी। वे मसीह के चरित्र की सुंदरता को निहारते हैं, लेकिन कई के साथ ये सब व्यर्थ था। वे अपनी आदतों और चरित्र के प्रति समर्पण नहीं करते। वे स्वर्ग के बागे से लिपटे रहने के लिए धर्मी के वस्त्र नहीं उतारते। उनके दिल उनके लालच को दिए गए थे। वे दुनिया के संघों से अधिक प्यार करते थे जितना कि वे अपने ईश्वर से प्यार करते थे। अंतिम निर्णय का दिन संगीन होगा। भविष्यवक्ता की दृष्टि में प्रेरित यूहन्ना इसका वर्णन करता है, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसकी जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य 20:112। दुख उस दिन पीछे हट जाएगा जब पुरुष अनंत काल तक आमने सामने रहेंगे, पूरी जिंदगी अपने आप को वैसा ही पेश करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। दुनिया के सुख, धन और सम्मान तब इतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। पुरुष तब देखेंगे कि उन्होंने जिस धार्मिकता से घृणा की वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद पुरुष शैतान के भ्रामक गठजोड़ों के तहत अपने किरदारों को निभाएंगे। जिन कपड़ों को उन्होंने चना है वे पहले आभार प्रकट करने के लिए उनकी निष्ठा का वचन है, फिर वे अपनी पसंद के परिणाम देखेंगे। उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का क्या अर्थ है। इसमें भविष्य की कोई परिवीक्षा नहीं होगी जिसमें अनंत काल तक पछताना पड़े। ये इस जीवन में है कि हमें मसीह की धार्मिकता के आधार पर रखना है। ये घर के लिए चरित्र बनाने का हमारा एकमात्र अवसर है जिसे मसीह ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमारी परिवीक्षा के दिन तेजी से बंद हो रहे हैं, अंत समीप है। हमें चेतावनी दी गई है कि सावधान रहें, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। लूका 21 आयत 34। सावधान रहो कहीं तुम तैयार ना पाए जाओ, कहीं तुम बिना परिधान के शादी में पाए जाओ। इसलिए भी तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नग्न ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। मत्ती 24 आयत 44, प्रकाशित वाक्य 16 आयत 15।